स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 28 अक्टूबर और दिन सोमवार। इस्लामिक स्टेट प्रमुख बगदादी की अमरीकी ऑपरेशन में मौत।
लास्ट नाइट वाज अ ग्रेट नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द वर्ल्ड।
क्या होगा इसका असर
डोनाल्ड ट्रंप के लिए? ये जो सीरिया के पॉलिसी पर जो कांस्टेंट तनकीद हो रही थी अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के तरफ से, अब मेरे ख्याल से वो बिल्कुल खामोश हो जाएगी।
दिल्ली वालों ने कैसे मनाई दीपावली?
अच्छा लग रहा है दिवाली, मोर हेल्दी और मोर कलरफुल हो रही है, और क्रैकर्स भी नहीं जल रहे जिसके कारण पॉल्यूशन भी कम होगा, और इस बार शायद हमें फॉग देखने मिले स्मोक के जगह।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि इस्लामिक स्टेट के भगोड़े नेता अबू बकर अल बगदादी की अमेरिकी सेना के एक स्पेशल ऑपरेशन में मौत हो गई है। अप्रैल 2010 में आईएस के संस्थापक के मारे जाने के बाद शुरा काउंसिल ने बगदादी को आईएस का प्रमुख बनाया था। इसी खबर से संबंधित एक अन्य खबर ये भी है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट नेता अल बगदादी के मारे जाने का उनकी सैन्य नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीरिया से अमरीकी सैनिकों की वापसी पर इस घटना का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने एक बार फिर सैनिकों की वापसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुर्की और सीरिया की रखवाली करते नहीं गुजारना चाहता। मेरे कहने का आशय ये है कि मैं अब ये नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत खर्चीला है और ख़तरनाक भी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने राज्यव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। राज्य में आग की वजह से स्थिति बेहद ख़राब है और तेज़ हवा इस स्थिति को और बढ़ा रही है। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को उनका घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। आग की वजह से बिजली आपूर्ति भी ठप है। राज्य के इतिहास के इस सबसे बड़े ब्लैकआउट की वजह से पहले ही 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि बिजली विभाग अपनी तरफ से तारों को जल्दी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि आपूर्ति शुरू की जा सके। सांसद माइक मैकग्वायर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा,
This is going to be a potentially unprecedented event for the county of Sonoma.
ये बेहद अप्रिय है। सिनकोमा काउंटी में हवाओं ने इसे और ख़तरनाक स्थिति में ला दिया है। अगर आपको नोटिस मिलता है कि आपको घर खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाना है तो आप वैसा ही करें। सांसद माइक मैकग्वायर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद के मुख्य चौक पर अब भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन के पास जाने की कोशिश करते रहे, जहां प्रमुख सरकारी इमारतें और कई विदेशी दूतावास हैं। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के इस्तेमाल से उन्हें ग्रीन जोन के पास पहुंचने नहीं दिया। प्रदर्शन में शामिल एक महिला मायजिर यास का कहना था, हम चाहते हैं कि इराक के प्रधानमंत्री आदेल अब्दुल महदी अपने पद से इस्तीफा दें। आप सत्ता में हैं और आरोप पुराने शासकों पर लगा रहे हैं, क्यों? आप बीते 16 सालों से हैं लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपने इस देश को बद से बदतर स्थिति में ला खड़ा किया है। हम इस देश के युवाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं। हम बस चाहते हैं कि हमें अन्य देशों की तरह सुविधाएं, नौकरी और एक सभ्य जीवन मिले। प्रदर्शन में शामिल एक महिला के शब्द। भारत के तमिलनाडु राज्य में 2 साल के बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित निकालने के लिए बड़े स्तर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीते शुक्रवार को 2 साल का ये बच्चा चिरुचिरापल्ली जिले में 180 मीटर गहरे और सकरे बोरवेल में जा गिरा। शुरू में बच्चा लगभग 10 मीटर की गहराई में ही फंस गया था, लेकिन इसके बाद वो और गहराई में चला गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दुर्घटना स्थल पर ही मौजूद है और बच्चे को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तमिलनाडु में जगह जगह बच्चे की सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने आपातकाल समाप्त करने की घोषणा की है। चिली में असमानता के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन पिछले एक सप्ताह से हो रहे हैं। हालांकि सेंटियागो समेत कुछ शहरों में पहले से ही कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया था। पिनेरा ने कहा कि वो देश को सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं। मेट्रो किराए में बढ़ोतरी से ये विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते एक बड़े और देशव्यापी प्रदर्शन में बदल गया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 28 तारीख और दिन है सोमवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अमरीका से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी अमरीकी सेना के एक ऑपरेशन में मारे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि शनिवार की रात अमरीकी सैनिकों ने सीरिया के इदलिब में एक ऑपरेशन किया, जिस दौरान बगदादी ने अपने आप को आत्मघाती जैकेट के धमाके से उड़ा दिया। बगदादी के 3 बच्चों के अलावा उनके कई चरमपंथी साथी भी मारे गए। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए भूमिका राय से।
The president's been determined for a very long time to bring Baghdadi to justice, and I want to compliment him and his team.
ये अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवाज थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीती रात अमरीका समेत पूरी दुनिया के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और खास रात रही। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के भगोड़े नेता अबू बकर अल बगदादी अमरीकी सेना के एक स्पेशल ऑपरेशन में मारे गए हैं और वो कभी भी किसी मासूम शख्स को, औरतों को और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे कायर मरते हैं वैसी मौत, और अब ये दुनिया पहले से कहीं अधिक सुरक्षित है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार को व्हाइट हाउस में आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सेना ने शनिवार की रात सीरिया में एक ऑपरेशन किया, जिसके दौरान बगदादी ने अपने आप को आत्मघाती जैकेट के धमाके से उड़ा लिया। ट्रंप के मुताबिक ऑपरेशन में किसी अमरीकी सैनिक की मौत नहीं हुई है, लेकिन बगदादी के कई अनुयायी मारे गए हैं और कुछ को पकड़ा भी गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए रूस, तुर्की और सीरिया का शुक्रिया भी अदा किया है। बगदादी की मौत पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
I think his given what he did in creating this caliphate and the damage that he's done to the Middle East and wider beyond.
अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रहम ने कहा कि राष्ट्रपति लंबे समय से बगदादी के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध थे। मैं उन्हें और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने बगदादी को मार गिराया। चरमपंथ के खात्मे के रास्ते में ये मील का पत्थर साबित होगा। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य तोबियास एलवुड का कहना है कि बगदादी की मौत निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है, लेकिन कुछ बातें समझ लेना भी जरूरी है।
Clearly, the guy was a coward and a murderer.
इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा जश्न मनाएं और खुशी मनाएं, ये जानना और पहचानना जरूरी है कि वो बहुत बड़े प्रोफाइल के नेता नहीं थे। वो ओसामा बिन लादेन जैसे नहीं थे, लेकिन अमरीकी रक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में बगदादी की मौत को एक बड़ी कामयाबी बताया है।
Last night was a great night for the United States.
ये बहुत स्पष्ट है कि वो एक कायर और हत्यारे थे। वो एक हत्यारे ही थे। उन्होंने महिलाओं के साथ रेप किया, और अब निश्चित तौर पर उनकी मौत के बाद ये दुनिया बेहतर होगी। इस ऑपरेशन में बगदादी के 3 बच्चे भी मारे गए हैं। आत्मघाती विस्फोट से बगदादी का शरीर टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन DNA टेस्ट से उनकी पहचान हो चुकी है। इसराइल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने कहा,
I want to congratulate President Trump on the impressive achievement.
इस ऑपरेशन की कामयाबी अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद से लड़ने के लिए साथ आने के संकल्प को और मजबूती देता है। बगदादी जहां मारे गए वो जगह सीरिया के इदलिब प्रांत से काफी दूर है। अमरीकी राष्ट्रपति ने बगदादी की लोकेशन को कंपाउंड कहा और बताया कि उन पर कुछ हफ्तों से निगरानी रखी जा रही थी। बगदादी साल 2010 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नेता बने थे।
ये थी भूमिका राय। और बगदादी के मारे जाने का ट्रंप की राजनीति और पूरे मध्य पूर्व पर क्या असर होगा, यही सवाल पूछा हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने अमेरिका के डेलवेयर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे प्रोफेसर मुख्तदर खान से।
डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जो सीरिया के पॉलिसी पर जो कांस्टेंट तनकीद हो रही थी अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की तरफ से, अब मेरे ख्याल से वो बिल्कुल खामोश हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आईसिस के लीडरशिप को मारना और जिस तरह से वो मारे गए, उससे रेडिकलाइजेशन पर, रिक्रूटमेंट पर और आईसिस की एक्टिविटीज पे काफी असर होगा। और मुझे लगता है कि आईसिस को रिकवर करने और अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करने थोड़ा वक्त लगेगा। ये जो टर्की का जो ऑपरेशन था नॉर्दर्न सीरिया में, खासतौर से कुर्दिश YPG के खिलाफ, उसके वजह से आईसिस को एक बहुत अहम एडवांटेज मिल गया था. कई आईसिस फाइटर्स और उनके फैमिलीज को रिहा कर दिया था कर्ड्स ने, क्योंकि वो अपनी एनर्जी तुर्की के खिलाफ. तो एनालिस्ट और सबका असेसमेंट ये था कि ये जो तुर्की का इंटरवेंशन है और अमेरिका का ट्रूप विड्रॉल है सीरिया से, उसके वजह से आईसिस को दोबारा मौका मिल गया है और अपने आप को कंसोलिडेट कर ले, खासतौर से सीरिया के हद तक. और इराक में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस केओस के वजह से भी इराकी गवर्नमेंट की भी तवज्जो हट गई है. तो आईसिस के लिए ये काफी अच्छा मौका था. और बगदादी के की मौत के वजह से मुझे लगता कि वो एडवांटेज लेने में आईसिस को जरा मुश्किल होगी. एसेंशियली ये कह सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ये बहुत बड़ा एक विक्ट्री है टेररिज्म के खिलाफ. लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ना तो अलकायदा खत्म हुआ, ना आईसिस खत्म हुआ, ना टेररिज्म, और वो तभी भी हैं और बगदादी की मौत के बाद भी रहेंगे.
और जिस तरीके से सर ये जो वक्त है बगदादी की मौत का, अमेरिका वहां से निकल रहा था, दुनिया भर में लोग सवाल भी उठा रहे थे, इस टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे?
मेरी नजर में ये अमेरिका के लिए बहुत ही फॉर्चुनेट टाइमिंग है कि बगदादी का पता चल गया, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से मुसलसिल एटलीस्ट यहाँ पर टेलीविजन पर, रेडियो पर, अखबारात में, और खुद मतलब जो ट्रंप के बहुत ही क्लोज एलाइज थे फॉक्स न्यूज पर भी, सेनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे लोग यूएस सेनेट में, वो मुसलसिल ट्रंप की सीरिया पॉलिसी की काफी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ये कहकर के इससे तो ये मैसेज जा रहा है कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, अमेरिका अपने एलाइज को कभी भी अबैंडन कर देगा. तो वो डिस्कोर्स बदल कर अब एक नया डिस्कोर्स शुरू हो गया था कि ट्रंप हैज लॉस्ट सीरिया. तो इस तरह से मतलब जैसा 1979 में जिमी कार्टर लॉस्ट ईरान, फिर पैनामा कैनाल, तो अब ये कह रहे थे कि ये परमानेंटली सीरिया हैज बीन लॉस्ट और ये ट्रंप की अचीवमेंट थी. लेकिन ये बगदादी को मारने से अब डिस्कोर्स एकदम बदल जाएगा. मतलब ट्रंप के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान गए कि वो कह रहे हैं कि मैं तीन साल से जब से आया हूँ पहले दिन से यही पूछ रहा हूँ बार बार कि बगदादी कहाँ है, बगदादी कहाँ है. तो एक किस्म से ट्रंप का नैरेटिव फिर से बदल गया है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हूँ मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी का, आईसिस को हम ही ने डिस्ट्रॉय किया, आईसिस कैलिफेट को, अब आईसिस के लीडर को भी हम ही ने मारा है. और ये काफी मतलब एटलीस्ट टेम्पररीली ये ट्रंप को काफी सक्सेस, मतलब ट्रंप की जो नैरेटिव है वो काफी ट्रायंफलिस्ट हो जाएगी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया. और यकीनन इससे जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है आईसिस की वो कम हो जाएगी. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि अगर आईसिस के फाइटर्स ये समझते हैं कि सीरिया और इराक में उनका फ्यूचर जरा कमजोर है तो वो दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे, जैसे पहले 2018 में हुआ था आईसिस की कैलिफेट कोलैप्स होने के बाद. कई फाइटर्स वापस अफ्रीका चले गए, बोको हराम ज्वाइन कर लिया, अफगानिस्तान में चले गए जहां पे वो इतने मजबूत हो गए हैं कि तालिबान भी उनके साथ मतलब उनको कंट्रोल करने की गारंटी नहीं दे सकी, जिसके वजह से अमेरिका के ट्रूप्स अफगानिस्तान से अभी तक नहीं निकले. तो ये आईसिस अफगानिस्तान में, अफ्रीका में और दूसरे ममालिकों में फिर से रीएमर्ज होगा. दूसरे मुल्कों के लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकता है अगर आईसिस फाइटर्स सीरिया से वापस अपने मुल्क जाने लगे.
डेलवेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुख्तदर खान उनसे बात कर रहे थे, दिलनवाज पाशा. और अब बात दीपावली की. दीपावली के बाद प्रदूषण में घुटने वाली दिल्ली में इस बार पटाखों का शोर कुछ कम रहा. सरकारों ने इस बार हरित दीपावली मनाने की अपील की थी. दिल्ली सरकार ने तो प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए विशेष आयोजन भी किया था. पर्यावरण को लेकर चिंताओं के बीच दिल्ली में कैसी रही दीपावली बता रहे हैं हमारे साथी दिलनवाज पाशा.
ये दिवाली की रात है, घड़ी में 9 बजे हैं और स्मार्ट स्क्रीन बता रही है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 पर है. ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन पिछले कुछ सालों के मुकाबले बेहतर है. मैं देख रहा हूँ मेरी बाईं तरफ कुछ युवा एक पेंटिंग के साथ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ कंदील उड़ा रहे हैं हवा में, लेकिन दिवाली होने के बावजूद यहाँ लोग पटाखे जलाते दिखाई नहीं दे रहे हैं. हाँ ये ज़रूर है कि दूर दूर से हल्का हल्का पटाखे छोड़े जाने का शोर आ रहा है. पर्यावरण को लेकर चिंताओं के बीच लोगों से हरित दिवाली मनाने की अपील की गई है. ये दिल्ली का राजीव चौक है और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि कितनी जागरूकता पर्यावरण को लेकर आई है और ये जो शांत सी हरी हरी सी दिवाली मन रही है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं? भैया कंदील उड़ा रहे हो, इस बार पटाखे छोड़े?
नहीं, पटाखे नहीं छोड़े इस बार ये छोड़े हमने।
क्यों पटाखे नहीं छोड़े?
पॉल्यूशन से बचने के लिए हमने पटाखे नहीं छोड़े इस बार हमने कंदील कर रहे
हैं, कंदील उड़ा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पटाखे ना छोड़ने से, लोगों के पटाखे ना छोड़ने से वातावरण कुछ बेहतर होगा?
वातावरण बेहतर तो नहीं होगा, बट हाँ ये कि कुछ कमी आएगी और जो आगे पॉल्यूशन बढ़ेगा उसको कम हो जाएगा और ये ऐसे इंजॉय करेंगे हम।
यहाँ पे इस बार दिवाली में पटाखे कुछ कम फूट रहे हैं और
पटाखे
कैसा लग
रहा है? अच्छा लग रहा है, दिवाली मोर हेल्दी और मोर कलरफुल हो रही है और क्रैकर्स भी नहीं जल रहे जिसके कारण पॉल्यूशन भी कम होगा और इस बार शायद हमें फॉग देखने मिले स्मोक के जगह।
मैम ये जो हरी हरी सी थोड़ा शान सी दिवाली है कैसी लग रही है आपको?
अच्छी लग रही है, मतलब आवाज़ कम है
पहले से। मैं कह रहा हूँ पॉल्यूशन काफ़ी कम है पिछली बार से।
इससे पहले कभी आपने ऐसी दिवाली?
दिल्ली में तो कभी दिवाली गुजारी नहीं, मेरी पहली दिवाली है दिल्ली में। पर घर से वापस आने के बाद 2-3 दिन बाद भी स्मॉग रहता था, पॉल्यूशन रहता था, तो कंपैरेटिवली वी आर एक्सपेक्टिंग लेस दिस टाइम, सो गुड फॉर ऑल ऑफ अस।
कैसा लग रहा है भैया?
बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है दिल्ली में और ये चीज़ अब हो रहा है और वो भी क्रैकर फ्लिप पॉल्यूशन फ्री होने के बावजूद, तो बहुत सही है। ये चीज़ हर साल हमेशा होना चाहिए।
अच्छा ये बताइए, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, दिवाली का मतलब होता था पटाखे लेकिन यहाँ हजारों लोग दिवाली मना रहे हैं और कहीं पटाखे नहीं फूट रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
पॉल्यूशन फ्री दिवाली है इसलिए यहाँ पे ऑब्वियसली पटाखे नहीं है, पटाखे से पॉल्यूशन होते हैं, इसीलिए यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसलिए ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट टाइम दिल्ली में कि पॉल्यूशन फ्री दिवाली हो।
आपको लगता है ये प्रयास कामयाब होगा?
हाँ ज़रूर होना चाहिए, ये चीज़
केजरीवाल है तो सब पॉसिबल है,
तो दिल्ली कुछ साफ रहेगी दिवाली के बाद। हाँ, तो मुझे याद है 2 साल पहले दिवाली की शाम थी, मैं दफ्तर आ रहा था और धुआं इतना ज़्यादा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लगभग यही वक्त रहा होगा। लेकिन आज कनॉट प्लेस में खुले आसमान के नीचे हजारों लोगों के बीच खड़े होकर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हवा उसके मुकाबले साफ ही नहीं बहुत साफ है। लेकिन दिल्ली की हवा की स्थिति क्या रहती है ये अगले 1-2 दिनों में पता चल पाएगा, क्योंकि स्मोग धुएं के वातावरण में ऊपर जाकर इकट्ठा होने पर जमता है और फिर जो दिल्ली में एक घुटन होती है, एक बेचैनी होती है सांस लेने में, वो महसूस होती है, तो ये अगले 1-2 दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज शाम यहाँ खड़े होकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रयासों का सकारात्मक नतीजा दिख रहा है। दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।
तो जैसा कि आपने सुना कि दिलनवाज पाशा बता रहे थे कि दिल्ली में कल पटाखों का शोर थोड़ा कम रहा, लोग सरकार की अपील पर ध्यान दे रहे थे और ख़ुद लोगों को ये लग रहा था कि शायद पटाखे पर्यावरण के लिए बेहतर नहीं है, तो उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन दीपावली का एक असर ये भी हुआ कि बहुत सारे अखबार या तो हम तक नहीं पहुँच सके या बहुत सारे अखबार छपे भी नहीं, लेकिन उन अखबारों की वेबसाइट के ज़रिए हमारी साथी भूमिका राय ने आपके लिए ये खबरें जुटाया है कि क्या क्या सुर्खियां हैं, कुछ अखबारों की भूमिका बताएं।
जी इकबाल, जैसा कि आपने दिवाली का जिक्र किया कि प्रदूषण और दिवाली जो पहली दिवाली मनाई गई थी उसके मुकाबले कल जो दिवाली मनाई गई उसमें कम रहा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा श्रेय लोगों को भी जाता है। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी सुना कि लोगों ने भी जागरूकता दिखाई, सरकार के प्रयास और लोगों की जागरूकता ने मिलकर ही इसे एक सफल मुहिम बनाया। इसके अलावा अगर जिस तरीके से आपने बताया, अगर सुर्खियों की बात करूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन जी और उनकी सऊदी अरब की इस यात्रा के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस जो है वो नहीं खोला है। तो सऊदी अरब की यात्रा के लिए जब प्रधानमंत्री, पाकिस्तान से ये कहा गया था कि वो अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दे, लेकिन उन्होंने साफ साफ इससे मना कर दिया है, यानी भारत के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा एक दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस जो कि बहुत चर्चित रेप केस रहा, लेकिन अभी भी उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें विधायक कुलदीप सेंगर को 72 घंटे की पेरोल मिल गई है। उनके घर में एक ज़रूरी एक आपातकालीन स्थिति आई जिसकी वजह से उन्हें और उनके भाई को 72 घंटे की पेरोल मिली है। शिवसेना ने सामना में शरद पवार की तारीफ की है और बुजुर्ग, उन्होंने लिखा है, बुजुर्ग छत्रप ने रोका NDA का अश्व, अकेले खड़ा कर दिया 100 का स्कोर। तो ये एक विरोधाभास जैसा है, क्योंकि शरद पवार पे हमारी एक रिपोर्ट भी थी जिसमें 78 साल के एक बुजुर्ग ने किस तरीके से चुनाव प्रचार किया और उनकी वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे थे।
बहुत शुक्रिया भूमिका आपका खबरों को बताने के लिए कि सुर्खियाँ क्या रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है सोमवार और आज हम आप तक पहुंचाते हैं पाकिस्तान के वसतुल्लाह खां की डायरी।
क्या आप हाफिज हमदुल्ला को जानते हैं? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं कि वो कौन है। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि वो बलूचिस्तान के शहर चमन में पैदा हुए, उनके पास वहाँ की म्यूनसिपल्टी का जन्म प्रमाण पत्र भी है। उनके पिता बलूचिस्तान में सरकारी टीचर रहे और इसी हैसियत में रिटायर भी हुए। हाफिज साहब के पास अपने पिता की 45 वर्ष पुरानी चेकबुक भी है जिससे वो बैंक से तनख्वाह वसूल करते थे। हाफिज हमदुल्ला 2002 के आम चुनाव में बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर बने और फिर 3 वर्ष राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। वो अपने राजनीतिक दल जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे 5 वर्ष सेनेट यानी राज्यसभा के मेंबर भी रहे और पिछले वर्ष ही सेनेटरशिप से रिटायर हुए। उनके पिता और पूरे परिवार के पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स भी हैं, जैसे आपके यहाँ आधार कार्ड होता है। हाफिज हमदुल्ला तमाम टीवी चैनल्स पे अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बाकायदा आते रहते हैं। 2 दिन पहले नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाले विभाग नादरा ने ऐलान किया कि हाफिज हमदुल्ला दरअसल अफगान नागरिक हैं, लिहाजा उनकी पाकिस्तानी नागरिकता रद्द की जाती है। हो सकता है कि हाफिज हमदुल्ला गैर मुल्की ही हों, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर उनके पिता और माता पाकिस्तानी नागरिक थे तो वो कैसे अफगान हो गए। नादरा ने इस घोषणा के बाद पाकिस्तानी मीडिया को रेगुलेट करने वाले विभाग पैमरा को ख़त लिखा कि चूंकि हाफिज हमदुल्ला विदेशी हैं इसलिए आइंदा वो किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं बुलाए जा सकते। जब पैमरा से पूछा गया कि क्या ऐसा कोई कानून है कि कोई विदेशी पाकिस्तानी चैनल पर नहीं आ सकता, तो पैमरा का जवाब था कानून तो नहीं है मगर ये आप नादरा से पूछिए। जब नादरा से पूछा गया कि हाफिज हमदुल्ला को किस वजह से अफगान नागरिक करार दिया गया, तो नादरा ने कहा हमें ये राज एक राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी ने बताया। दूसरी ओर हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि मेरे पैदा होने के 51 वर्ष बाद मुझे पता चला कि मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो अब वो क्या चाहते हैं, मैं काबुल या दिल्ली चला जाऊँ? तो फिर मोदी आसाम के मुसलमानों के साथ क्या गलत कर रहा है? हाफिज हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम के नेता हैं और उनकी जमात के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ताकि इमरान खान से त्याग पत्र ले सकें। कल ही कराची में एक रिटायर्ड पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार के हाथों कथित तौर पर मारे जाने वालों की याद में किलिंग फील्ड्स ऑफ कराची के नाम से एक आर्टिस्ट अदीला सलमान ने फेयर हॉल के मैदान में 444 प्रतीक आत्मक कब्रें बनाई। एक घंटे बाद ही सादा कपड़ों में कुछ लोग आए और सबको बाहर निकाल के इस जगह को सील कर दिया। अदीला ने पूछा आप कौन हैं? जवाब मिला हम एक गुप्तचर संस्था के कर्मचारी हैं। अदीला ने पूछा कौन सी संस्था? जवाब मिला बताया तो है गुप्तचर।
ये थे वसतुल्लाह खां और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। गेंद से छेड़खानी के बाद मिली सजा काटने के बाद डेविड वार्नर की घर वापसी कल शानदार रही। वैसे तो उनकी टीम वापसी पहले ही हो चुकी है, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेलते हुए उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पहले 2020 मुकाबले में 34 रन से हरा दिया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 234 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 9 विकेट खोकर 99 रन बना सकी। और अब समीक्षा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 और कामयाबी के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम की कामयाबी का राज क्या है?
हमारा ये क्वेश्चन था कि पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालना,
चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे ऑकलैंड हो, जिधर भी, चाहे मेलबर्न हो जहाँ पे हम जीते अगेंस्ट हो, एक बार 20 निकाला फिर जो बैटिंग है हमारे पास अगर वो चल गया तो मतलब वो फरारी चल गया।
ये कहना है भारत के कोच रवि शास्त्री का। और जब जीत की कामयाबी मिले तो फिर जो कहें वही सच, लेकिन ये अर्ध सत्य भी नहीं है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अगर उसी की जमीन पर टेस्ट सीरीज में पहली बार मात दी थी तो उसका सेहरा गेंदबाजों के सिर ही बंधा था, और उसके बाद वेस्टइंडीज को भी उसी की जमीन पर मात देकर भारत ने अपनी कामयाबी को दोहराया। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद लगता था कि भारत का दौरा करने वाली दक्षिण अफ्रीका शायद कड़ी चुनौती देगी, लेकिन उसका 3-0 से हारना इस बात का गवाह है कि उसने भी भारत के सामने घुटने टेक दिए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पिच के भूत को कोच रवि शास्त्री ने भारत के सिर से उतारा वो दक्षिण अफ्रीका के सर पर चढ़ गया, लेकिन तीनों टेस्ट मैच में पिच शानदार थी। भारत पहला टेस्ट मैच 203 रन से, दूसरा टेस्ट मैच एक पारी और 37 रन से, और तीसरा टेस्ट मैच एक पारी और 202 रन से जीता। भारत के कप्तान विराट कोहली तीसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद बोले,
ये पिच ऐसी है कि आप जो स्किल कन्विंसिंगली करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट पिच है या टर्निंग पिच है या फास्ट बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा असिस्टेंस है, जो अपनी स्किल को अच्छे से करेगा आपको उसका जो रिजल्ट है पिच से मिल जाएगा। बॉलर्स प्ले में थे जब बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, अगर आपने बैटिंग अच्छी करी तो रन है। हमारे स्पिनर्स को भी ज्यादा परचेज मिला, फास्ट बॉलर्स को भी मिला, बट हमारे बैट्समैन ने भी 500 रन किए।
अब अगर भारतीय बल्लेबाज चमके तो दक्षिण अफ्रीका का तो ये हाल रहा कि तीनों टेस्ट मैच में उसके बल्लेबाज आया राम गया राम, तू चल मैं आया जैसे साबित हुए। यहाँ तक कि उसके कप्तान फैफ डु प्लेसी भी हैरान थे। मोहम्मद शमी, उमेश यादव और अश्विन रविंद्र जडेजा और यहाँ तक कि अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले शाहबाज नदीम तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घातक साबित हुए। दूसरी तरफ रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज क्या बने, रनों का तूफान आ गया। उन्होंने 3 शतक ठोके जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है, तो मयंक अग्रवाल के बल्ले से भी पहला ही शतक दोहरे शतक के रूप में निकला। कप्तान विराट कोहली ने भी दोहरा शतक बनाया, तो अजिंक्य रहाणे भी अपनी खोई फॉर्म वापस पाकर शतक बनाने में कामयाब रहे। पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने अंगद की तरह पांव जमाए रखे और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एक बार भी उन्हें ऑल आउट नहीं कर सके। रवि शास्त्री को बल्लेबाजों और गेंदबाजों के दम पर जीत का फॉर्मूला मिल गया।
ऐसा जो हमारा बैटिंग है, जैसा जो रोहित शर्मा की है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, मयंक अग्रवाल, अगर शुरू हो गए और फिर अगर आपके पास 5 बॉलर है जो 20 निकाल सकते हैं, पॉइंट्स निकालना 20 और फिर 60 देखना है या 40 देखना है या 20 देखना, बस वो हिसाब है ये टीम।
ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत का नंबर एक होना बताता है कि क्रिकेट के कम से कम एक स्वरूप में तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अपने ही घर में लगातार 11 टेस्ट सीरीज जीतना बताता है कि यहाँ आते ही विरोधी टीमों का बल वैसे ही आधा हो जाता है जैसे बाली के सामने जाने पर दुश्मन का। और अब तो अगली टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे कुछ तो टक्कर मिलेगी। उधर इंडियन सुपर लीग को कल एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत के शीर्ष फुटबॉल टूर्नामेंट के तौर पर मान्यता दे दी। साथ ही निर्देश भी दिया कि साल 2020-21 के सत्र के अंत तक 2 आई लीग क्लबों के ISL में खेलने का रास्ता भी निकाला जाए। उम्मीद है इससे भारत की उस राष्ट्रीय टीम का भी भला होगा जो विश्व कप क्वालिफायर में बांग्लादेश से भी बराबरी वाले मुकाबले खेल रही है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि इस्लामिक स्टेट के नेता अल बगदादी की अमेरिकी सेना के एक स्पेशल ऑपरेशन में मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट नेता अल बगदादी के मारे जाने का उनकी सैन्य नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने राज्यव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। राज्य में आग की वजह से स्थिति बेहद खराब है और तेज हवा इस स्थिति को और बढ़ा रही है। इराक की राजधानी बगदाद के मुख्य चौक पर अब भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी ग्रीन जोन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में 2 साल के बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित निकालने के लिए बड़े स्तर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते शुक्रवार को 2 साल का यह बच्चा चिरुचिरापल्ली जिले के में 180 मीटर सकरे गहरे बोरवेल में जा गिरा था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलते खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।